पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
अर्ज करी भगवान विष्णु प्रगट हो गए। अका भी बेटा कैसे याद किया, कैसे याद किया मुझे कि भगवान मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा और आज मुझे मैं आज कुछ मांगना चाहता हूं। अक मांग अग्ना वचनबद्ध हो गया। आज मुझे हरि रूप चाहिए, मैं विवाह कराऊंगा। हरी का अर्थ संस्कृत में बंदर भी होता है। विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह लगा दिया, विष्णु जी चले गए। अब नारद जी ने सोचा कि मैं सबसे हैंडसम हो गया इवे, और वो आ गया स्वयंवर में। स्वयंवर में चेयर रखी हुई थी, सभी राजा महाराजा जो भी विवाह कराने के इच्छुक थे उस पर बैठ के विराजमान हो गए। अब नारद जी भी बैठ गया जज के कुर्सी पे। अब लड़की आई माला लेकर, वरमाला। अब जो ही वो नारद के पास आई तो कति सोच लिया था आते बनेगा काम। अब वो लड़की उसे आगे गुजर गई, आगे निकल गई। उसने सोचा लड़की का ध्यान नहीं पड़ा दिखे। अब वहां से उठ के खाली कुर्सी और थी वहां जा बैठा, अकी भी दर्शे आओगी जब दिखूंगा। अब वो उसके पास से फिर आगे गुजर गई, थोड़ी सी पीछे हो केवल के अकुआ सकल उसके डूडर लागे कहे मार दे दूर रखे। तो जब वो आगे चली गई तो बहुत सोचने लगा क्या बात होगी। उसके पास में एक बैठा था, ने बोला भगत अपनी सकल देख, वो शीशा दिखा उसने पानी दिखाया कटोरे में, अपनी सकल देख करा तू क्या हमने डर लागे न रहा तू छोरी लड़की सोच के हमने डर लगाए तेरे से। जब उसने देखा तो असल अपने जल में सूरत वो तेरा गजब हो यो। इतने में क्या हुआ कि विष्णु जी आ गए, खाली चेयर पर बैठ गए। उस लड़की ने विष्णु जी का वरमाला डाल दी। अब नारद जी की तो 100 पे सुई गई, एकदम क्रोधित हो गया और 100 गाली सुना दी विष्णु के, तू छलिया है छल कपटी है, तू किसी को सुखी देखकर नहीं प्रसन्न होता, तू किसी को बसता देखकर खुश नहीं है, और श्राप दे दिया कि तूने जो मुझे बंदर का मुंह लगा है, और तू सारी उम्र अपनी पत्नी की, आज मैं एक औरत के वियोग में दुखी हूं, तू सारी उम्र सारा जीवन एक अपनी औरत के वियोग में गुजारेगा व्यतीत करेगा। अपने आत्माओं, नारद जी पहले तो सिंगर के गया था मैं विषय विकारों पर काबू पाऊंगा, और फिर उन विषय विकारों का आगे घुटने टेक दिए, नतमस्तक हो गया, ब्याह करवाऊंगा, और फिर विष्णु जी को श्राप दे दिया। वो विष्णु जी उस श्राप को आप नहीं समाप्त कर सके, भोगना पड़ा नारद जी के श्राप। ये 3 ताप होते हैं, इन 3 तापों में से किसी एक ये भी है कि कोई श्राप दे दे, कोई जंतर मंत्र कर दे, कोई गाल गाल दे, कोई अन्य प्रेत आत्माओं को किसी में डाल दे, तो उनको भी ये भगवान तीन ताप का नाश भी नहीं कर सकते। और कबीर परमेश्वर है, वो तीन ताप का नाश भी कर सकता है, आपके ऊपर कोई व्याधा किसी प्रकार की उसको पूर्ण रूपेण समाप्त कर सकता है। तो भगवान श्री विष्णु जी ने रामचंद्र रूप में पूरा दुख उठाया, अपनी पत्नी के वियोग में सारा जीवन व्यतीत किया, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में 2 वर्ष के बाद ही सीता का अपहरण हुआ, 12 वर्ष वो रही वहां रावण के बाग में, युद्ध करके मार मुड़ के रावण को वापस लाए, 2 वर्ष के बाद फिर त्याग दी, घर से निकाल दी गर्भवती अपनी पत्नी। अब पत्नी वाल्मीकि के आश्रम में और पति अयोध्या का राजा, जिसका परिवार कहीं हो और वो राजा कितना ही अच्छा लगता हो, उसका जीवन नरक तुल्य होता है। अंत में भी नहीं मिल पाए दोनों के दोनों, सीता समा गई पृथ्वी में और श्री राम अर्थात विष्णु जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, उसमें छलांग लगा गई, जीवन अंत किया। फिर श्री राम रूप में बाली को मारा था श्री विष्णु जी ने, यानी रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई को, उसका भी बदला देना पड़ा, श्री कृष्ण रूप में आए वही। और एक शिकारी जो बाली वाली आत्मा थी वो शिकारी बना हुआ था, विषाक्त जहर से युक्त उसका तीर था, वो श्री कृष्ण के पैर में मार के उनका वध किया, अपना टिट फॉर टैट लिया। तो यहां परमात्मा कहते हैं कबीर जी, तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे न ये तीनु तापम। अब प्रसंग चल रहा है, वही आते हैं, जिनकी आप पूजा करते हो, हम भिखारी बने फिरे थे, सत साधना ना करके, सत पुरुष की पूजा ना करके, हम इन भगवानों के आगे हाथ फैलाए फिरते थे, और ये कुछ दे नहीं सकते, ये अपना दुख दूर नहीं कर सकते, अपना पाप नाश नहीं कर सकते। तो जब तक हम उस पूर्ण परमात्मा, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी बम्बारी असी सवर ज्योति रित धामा असी। कबीर परमात्मा जो, कबीर साहब जो है वो पाप नाशक है, पापों का शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्बारी बम्ब माने बंधन, अरि माने शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला, बंदी छोड़ यानी हम कर्म बंधनों से यहाँ कैद हैं काल के जाल में, और इस बंधनों को कोई काट दे वो बंदी छोड़, कर्म काट दे वो बंदी छोड़, बंध से छुड़ाने वाला। तो कबीर अंगारी असी बम्बारी असी बंधनों का शत्रु है। आपको थोड़ा सा हिंट दिखाते हैं। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं, कि वेद मेरी महिमा गाते चारों के चारों। लेकिन इन वेदों में मुझे पाने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। ये देखिएगा यजुर्वेद, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, ये यहां से छपा है, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इस 5वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाते हैं, ये है 5वां अध्याय 5वां, और ये यजुर्वेद, ये 32वां अध्याय श्लोक है, मंत्र है। यहां लिख रहा क्या, उसी गसी कबीर अंगारी असी। अब हम इसको कबीर बोलते हैं, बै कबीर, ये वह है, हम बै बोला करें, जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश होता हम कहेंगे आ वेद प्रकाश आ जा, जैसे कोई धर्मवीर है तो धर्मवीर बोल लिया करें, ये हमारा अपना लोकल लैंग्वेज है। तो हम इसको कबीर को कबीर बोलते हैं, अंगारी माने पापों का शत्रु, बम्बारी माने बंधनों का शत्रु, इन्हीं का। फिर है सवर ज्योति रित धामा असी, ये देखो, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांतिमान हैं, अंगारी माने छोटे चलन के जीवों, छोटे चलन वाले जीवों के शत्रु, नहीं ये तो बकवाद कर रखी है अनुवाद ठीक नहीं किया, अंग अरी माने शत्रु, अरी इसको संधि छेद कर अंग अरी, अग अग माने अंग माने पाप होता है, पाप का शत्रु। और इब इसने क्या कर दिया, इसका अर्थ इब यू कर दिया, संधि छेद करते समय इसको ऐसे कर दिया। और हम इसको अगर जैसे ये यजुर्वेद है, यही इसका इन्हीं से सेट होगा ये मामला। अब ये 36वां अध्याय यजुर्वेद का दानंद द्वारा अनुवाद है इसका। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे, ये यजु शब्द है ना ओनली, और यहां अनुवाद किया इसने इसका, इसमें यजु का अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया। अब ये यजु है, यहां लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद के विषय में है, ये पूरा अब बना इसका अर्थ यजुर्वेद। तो यहां ये देखो कवि है, इन्होंने यहां कवि कर दिया इस पांचवें अध्याय का। और ये जो 32वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो कबीर शब्द है इसको इन्होंने ऐसे कर लिख दिया। अब इसका अर्थ करते समय यह लिखना चाहिए था कबीर देव लिख देते, ये कबीर वह लिख के कबीर लिख देते, कबीर देव लिख देते, तो हम उसको कबीर देव बोल रहे हैं, कबीर देव हम उसको कबीर देव, देव माने परमेश्वर, कबीर साहब हैं, यहां लिखना चाहिए वो कबीर देव हैं। ये कहना कवि इनकी वो समस्या भी हल हो जाए, कवि वो कबीर देव लिखना था, कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं, कबीर अपने लोकल लैंग्वेज में, वो कबीर साहब हैं। बम्भारी माने बंधनों के, अरी माने शत्रु, ये तारा दिए जिसकी बकवास है विस्तार तेरा, अरी माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, बस ये छोड़ दो, यानी बंधन के शत्रु, अरी माने शत्रु, बम्ब माने बंधन, बंधनों के शत्रु बंदी छोड़ हैं कौन, वो कबीर हैं, कबीर देव हैं। और अंगारी माने पाप नाशक, ये गलत अनुवाद किया इसने। और फिर कौन है वो, रित धामासी, रित धामा सत धाम युक्त, सतलोक युक्त, हम सत धाम कहे उन्हें सत धाम, सतलोक कह देते हैं, लोक कहो धाम कहो एक ही बात है, सतलोक युक्त यानी रित धामा यानी वो सतलोक वाले हैं, सतलोक में रहते हैं, हैं। और सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति इन अड़ंगा कर रखा है अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले, सवर ज्योति का अर्थ है स्वयं प्रकाशित, तेजो में शरीर युक्त परमात्मा है। अब प्रसंग चल रहा है पुणात्मा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए, वेदों में ओनली एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है और उसका सिमरण करना है, ओम कर्तु समर, किल्वे समर और कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, ओम नाम का जाप विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जान के इसका सिमरण करो। तो उसमें क्या लिखा है कि वायु अनिलम अथ इदम बसमांतम शरीरम, यानी शरीर जब नष्ट होगा, फूक्या जाएगा, अंत होगा, उस समय तुझे ओम से मिलने वाला अमृतव प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, गीता ज्ञानदाता ये वही है जो वेद ज्ञानदाता है, ब्रह्म ही है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है, ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम से याति परमाम गतिम, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, यही है और कुछ नहीं, और जो इसका उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है सहयाति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त करता है। ओम से कौन सी अमरतो मिलेगा, कौन सी गति मिलेगी, वो मिलेगा ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत गीता जी में भी पुनरावर्ती में वहां गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5-9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में, गीता ज्ञान दाता कहता अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी नाशवान है, इसके पुजारी भी नाशवान ही रहेंगे, जन्म मृत्यु होती रहेगी, वो परम पद नहीं मिल सकता जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और उसके बिना युजरा मरण मिटे नहीं या चलो चलो मिटे नहीं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञान दाता अपने इस गति को भी जो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में यह कह रहा है इसको भी अनुतम बताता है, यह भी अनुतम गति है मेरी, क्योंकि जन्म मरण मिटे नहीं, जरा मरण रोग कट्टे नहीं, फिर गता की हुआ है जो टट्टू है। फिर आपने देखा होगा उस कई बार दिखाया आप जी को इस महावीर जैन जी के जीवन कलेजा जाए, आदमी जरा सा भी ओंस में होता है, 80 लाख बार तो देवता बना और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, अब चाट ले उस देवपद ने जब कुत्ता बन गया थे। तो कहने का भाव ये है कि यहां जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में जो कहा है कि भस्मांतम शरीरम अमृतम, तो ओम नाम से मिलने वाला अमृत वहां मिलेगा, अब इतना ही मिलेगा, कितना मिलेगा, ब्रह्मलोक में चले गए। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में इन अनुवादकर्ताओं ने यहां फिर अज्ञानता दिखाई है, इन्होंने ये तो लिख दिया कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्राणी नाशवान है यानी पुनरावृत्ति में है, वहां गए भी वापस आते हैं, सताई सता नहीं होता, चलो चलो नहीं मिटी। उन्होंने ज्ञानवाद गलत कर दिया कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर जन्म नहीं होता, ये गलत अनुवाद कर दिया। फिर ये सारे जो है मंत्र व्यर्थ हो गए जिनमें ये कहा तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके तू उस परमात्मा की भक्ति कर, तो यहां अनुवाद गलत किया। इसका अर्थ ये बनता है कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में है, तो अर्जुन मुझे प्राप्त प्राणी का भी पुनर्जन्म होता ही है, इन्हें अनुवाद गलत कर दिया। विद्यते का अर्थ विद्य माने जानना होता है, कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में है, वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म, उसका भी पुनर्जन्म है अर्जुन, इसका ये यथार्थ है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 को हम पढ़ रहे थे, जिससे हम बाहर गए, अन्य जो आपके समक्ष सारा कुछ करके लाए हैं ये इसके लिए लाए हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में आपने पढ़ा, और गीता ज्ञान दाता भी कहता है कि उस परमेश्वर की भक्ति कर जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लौटकर साधक कभी संसार में नहीं आते, और पुण्यात्माओं यदि आप सतलोक आश्रम बरवाला आओ उसके आने से पहले ये निश्चय करके आया करो कि हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है, हमारा जरा मरण मिटे, कोट जन्म तन भ्रमत हो गए कुछ नहीं, हाथ लग्या रे स्वर्ग में देवता बन गया, फिर यहां गधा देवता बन गया, बता क्या फायदा है स्वर्ग का, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, तो यहां का फिर कौन सी साधना शेष रह गई, और सतलोक की जो ज्ञान साधना बताते हैं ये नकली पंथ, इनके पांच नाम पांचों नाम काल के, बताइए कैसे वहां जाएंगे, काल के जाल में यहीं फंसे बैठे हैं, और उन पांच नाम के जाप करने वाला शिवदयाल जी खुद भूत बनकर बुक्की में बोल रहे हैं, ब्रह्म मट्टी हो रही उसकी, होक्का पीवे फिर दे रोटी खावे, बता दशरथ लोग गया होता यहाँ टिंडे लेना होता वो, और फिर ये इच्छा रहती उसकी होक्का पीण की। परमात्मा कहते हैं संशय शोक सराय में ये सूतक दिन रहती, और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती, यहां ब्रह्मवाटी होगी इसकी, और फिर यम के दूत दे ही तोड़ेंगे वो अलग से दुख होगा, सदा 84 लाख योनियों में स्वयं चला गया लाखों को और उसमें झोंक गया भाड़ में। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 आपने पढ़ा, अब प्रसंग चल रहा है कि या चलो चलो क्यों कैसे मिटे, बिन साहेब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना, हम इसको ठिकाना मान रहे कोठियों को, कल मृत्यु हो जाए काय का ठिकाना, ठिकाना ये खाक ठिकाना हमारा, हम इस बांधे हुए बैठे हैं, कति समर्पित हुए बैठे हैं, और बकवाद करें नारी पाप कट्ठे करें वो अलग से। तो पुण्यात्माओं जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में आवे तो पहले ये निश्चय करके आया करो, और फिर जो आपके ऊपर तो मालिक अनजान थोड़ी है। जब आप डॉक्टर के पास आएंगे हार थक के, तो फिर डॉक्टर कोई बालक थोड़ा ही, वो सब जानता है इसकी कौन सी वस्तु कहाँ डिफेक्टिव है और कौन सी बीमारी का पहले इलाज करूं ताकि इसका जीवन बचा रहे। अब पुण्यात्माओं, जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उससे ब्लड निकल रहा है और वो बता रहा है जी मेरे पेट में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, मरगा है, मर गया। अब वो डॉक्टर उसके उन पीड़ाओं को नहीं देखेगा, वो पहले उस ब्लड को बंद करेगा, ऑपरेशन करेगा उसके। वो पता है, उसको भी मालूम है कि ये ठीक रो रहा है कि इसका दर्द है अभी, लेकिन डॉक्टर ट्रीटमेंट सही स्थान पर करा, इसका जीवन रक्षा इससे होगी, यूं तो बाद में भी कर दूंगा। तो पुण्यात्मा आप यहां आते हो तो आप समझ लो उस हॉस्पिटल में आगे जिसमें आपके सारे पाप कटेंगे, सारे रोग कटेंगे, और जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग भी यहीं कटेगा। तो आप तो केवल एक डिमांड लेकर आते हो कि हे भगवान मेरा काम चल जा, हे भगवान मन पुत्र प्राप्ति हो जा, और मेरा ये पीड़ा है या ठीक हो जा। और परमात्मा को पता है कि इसकी उम्र रह रही है 20 दिन की। अब आपका वो दुख हटाएगा उस जिससे आपकी मौत ना हो, ये दुख तो फिर दूर कर देगा भगवान 2 दिन पीछे। तो आपके जीवन अंत होने वाले जो संस्कार हैं उनका नाश करेगा, और उसका कुछ विधान बनाया भगवान ने। और आप केवल एक ही डिमांड करते रहते हो, ये हो जाए वो हो जाए, तो आपकी कम सुनाई होगी उस टाइप की, क्योंकि अभी आपसे ये भक्ति करवा के, आपसे पुण्य करवा के वो जीवन एक्सटेंशन करना आवश्यक है। ये तो फिर कर देंगे, कौन से दूर है, इसे सुख कर देगा भगवान, आपके सपने में बिना सोचे होंगे इतना धन दे देगा, पर यू धन अच्छा नहीं है। ये आपको इतना धन दे देगा लेकिन यह धन भी अच्छा नहीं है, ये सत्कर मान लेना, और इतना सुख दे देगा आपके समझ में नहीं आवा, इतना हो भगवान सचमुच परमात्मा ऐसा करता है, हमने सुना सुना था। आप यहां होता देखोगे, एक नहीं 100-100 देखोगे एक एक घर में, लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं पता नहीं कितना सुख देता हूं अपने बच्चों को, मुझसे क्या, डॉक्टर कोई दुश्मन थोड़ा ही है, उसको पता इसका सारा रोग ठीक हो जाना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं मुझे मालूम है, यदि ज्यादा सुख दे दिया तुम फिर मुझसे दूर हो जाओगे, राम भूल जाओगे, बकवादों को फिर ढूंढ लोगे, जैसे सतलोक में हमें सब सुख था और हम भूल गए भगवान को, इस शैतान के साथ आगे इस काल के साथ, इसको मालिक मान लिया, इस आसक्त हो गए, जो सर्व सुविधाएं दे रहा था उससे हम विमुख हो गए। तो परमात्मा हमें उस अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये भी एक फॉर्मूला बताता है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल राम रटावे। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं इसे सुख के आग लगे दो, भगवान ते दूर करे। हे परमात्मा इतना दुख भी दिए रखना, तेरी याद बनी रहे। तो इतना कष्ट आप पर रहना चाहिए, घना सुख नहीं मिलना चाहिए। सुख मिलते ही आप भगवान से दूर होगे, दास का इसमें बहुत बड़ा अनुभव है। ऐसे व्यक्ति आए थे यहां पर बहुत से जो ज्ञानहीन, उनको कुछ दिन ठीक साधना करने से उनको सुख हो गया, अब वो छोड़कर चले गए। अब क्या होता है, आप जी को कल भी बताया था कि एक सतनाम की मंत्र की कितनी कीमत है आपके पास, एक श्वास उस श्वास से आपने सतनाम का जाप कर लिया जो 2 अक्षर का है, और उस 2 अक्षर के जाप से आपकी कितनी कमाई बनगी। परमात्मा ने सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में श्री आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से उसके अंतःकरण में फीड करके बाहर निकलवा रखी है, जैसे वेदों को इस ब्रह्म के अंदर फीड कर दिया और ब्रह्म ने फिर ये बार ब्रह्म से बाहर आई है उसके श्वासों से। और ऐसे गरीबदास जी ने को इन्होंने ये ज्ञान दिया। फिर गरीबदास जी ने बोल के ये बोला, उसमें क्या बताया है कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सांस के सिमरण का एक विधिवत यानी पूरे संत से प्राप्त करके मर्यादा में रहते हुए श्रद्धा से कसक के साथ एक श्वास की कीमत से, कहते हैं 14 लोक एक पालड़े में, एक तराजू के एक साइड में बैलेंस होती है जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक चल पड़ी है, तो फिर भी उसमें लकड़ के डंडी होती थी, 2 पलड़े नीचे लटकते होते थे और उसमें अगर कोई एरर होती थी तो जो सौदा तोलने के लिए आया है व्यापारी, जैसे चने तोलने हैं तो चनों की एक मुट्ठी भर के दूसरे पलड़े में डाल दी जाती थी ताकि वो बैलेंस एरर लेस हो जा, डिफेक्ट ना रहे इसमें, तो उसको पासिंग कहा करते कि पासिंग ठीक कर, इसकी इसमें पासिंग है, डिफेक्ट है। वो पासिंग ठीक करने के लिए एक मुट्ठी चने एक पलड़े में डाल दिए जाते थे, वो एक सार हो जाते थे, उसको पासिंग कहे। वो सौदे में नहीं आती पासिंग। और ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, इंद्र वाला लोक जिसको स्वर्ग, और एक पाताल लोक, ये 3 लोक है। ये तो न्यू सोचो पासिंग में है, ये सौदे में नहीं आते। और हम एक सरपंच बनकर राजी हो गए, हम एक MLA MP बन जा फूले नहीं समावे, तो हमारी बालक बुद्धि है या आप कितने धनी हो। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना को, धनवंता सो जाड़िए जिस पर सतनाम धन हो। ये सतनाम राम नाम धन हो, राम नाम सतनाम है। अब और 14 लोक चढ़ावे, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, और तोना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम की कीमत एक पालड़े में एक श्वास की, श्वास उस श्वास की, और दूसरे पलड़े में 14 लोक, इंद्र का लोक, शिव का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्म लोक, ब्रह्म लोक में बने हुए अन्य जो नकली सतलोक अलख लोक वो, और अन्य सभी 14 लोक। वो कहते 14 लोक एक साइड में चढ़ा दे, एक तरफ उसके सतनाम की कीमत, और ये 3 लोग तो पासिंग के स्थान पर समझो, आउट ऑफ बिजनेस, ये तो सौदे से बाहर है। कहते सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासिंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सांस के मंत्र की कितनी वैल्यू है जो आप एक बार ढंग से कर लोगे सतनाम के मंत्र की। अब जिसने 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष भक्ति की, उनको सब सुख हो गए, कष्ट आवे को नहीं, क्योंकि तो सर्व सुखदायी परमात्मा सुख सागर है ये। अब उनका भूल पड़न लायेगी, अभिमान होने लायक गया, या छोटी छोटी बातों पर अभिमान वश कोई 100 डिफेक्ट हमारे में निकालने लग जाते हैं। फिर उनको समझाया जाता है, क्योंकि दास एक टीचर है, तुम स्टूडेंट हो, आपको दास कभी प्यार भी देगा, गलती करोगे तो धमकाओ भी गा, भाई खबरदार ऐसा कर दिया तो ना जाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों अपना क्रम बिगाड़ रहे। तो उन क्योंकि वो सुख हो गया बेटा, वो छोटी मोटी बातों में अपने आप निकल जाते यहां से। और अब वो क्या कहते हैं कि हम तो अब भी सुखी है, हम तो पहले भी सुखी थे, अब हमारा क्या बिगड़ गया। अब ये जैया उनकी हृदय में अज्ञान ना होता तो यहां से धक्के दिए थे बिना जमानत से। अगर इतना ज्ञान उनमें होता तो यहां से नहीं जा सकता, क्योंकि जो बच्चा अध्यापक उसको धमकाता है उसके हित में, और यदि वो बच्चा अध्यापक के धमकाने से, खुरकाने से, डांट लगाने से और स्कूल त्याग जाता है तो कितनी बुद्धिमता की उसने। अब यहां आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, तो अध्यापक का कर्तव्य बना है इनको खुरका धमका के इनके भविष्य को देखते हुए इनको सुचारू करूं। और बच्चा जो डॉक्टर अपने टीचर की डांट भी खाता है और आगे फिर बढ़िया ठीक ढंग से उस त्रुटि को ठीक करके आता, तो वो बच्चे सफल होते हैं, और जो छोड़ के भाग जाता है तो उसको अपना जीवन नाश करते हैं। अब उनको फिर पता चलेगा, वो कह रहे ना अब हमने कोई तकलीफ नहीं, हम सब ठाट हैं, यूं के यूं। अब वो 2-4 वर्ष की जो भक्ति उन्होंने सुचारू की थी, अब वो उसके गुड अकाउंट में है, अब वो नरे पाप कर रहा है, तो जब तक उसकी वो पूंजी रहेगी पुनों की भक्ति की, तब तक तो वो उसे आग लगाओ, शराब पियो, बकवाद करो, भगवान ने भी याद ना करो, तो वो तो पूरी देगा काल, उनको काल के उसमें चले गए विधान में। और जब वो बैटरी डाउन होगी इनकी, वो समाप्त हो जाएगी कुछ दिनों में, फिर रोएंगे। आज दास देख रहा है, छह छह वर्ष जो यहां से त्याग कर चले गए थे, अब छह वर्ष के बाद किसी के जीभ में कैंसर, किसी के गले में कैंसर, अब आवे रोते हुए। अपने पहले पता था इसकी कोई क्रड़ाई उठा कर ले गई यहां से भगवान को छोड़कर। कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, और सौ काल तक जोली पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अब जैसे विद्यार्थी को टीचर उसी को खुरकाता धमकाता है, उसके भविष्य को देखते हुए जो स्कूल विद्यालय में प्रवेश है उसके अंतर्गत आता है, वही बच्चा जो पहले गलती करता था, स्कूल त्याग गया और फिर बाहर बकवाद करता फिरता है, गधे पर बैठ कर घूम रहा है बकवादों में, और टीचर पास से जा रहा है, वो नहीं टोकेगा उसको से बाहर में जाए भी तो अब टीचर से उसका लिंक नहीं रहा। तो बाहर गए हुए व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम ठाट से हैं, सारे गधे पर बैठे अंडे हैं, अब ना कोई हमें कुछ कहता ना कोई तकलीफ होती। तो अब परमात्मा उनको नहीं कहेगा, क्योंकि परमात्मा के ऑपरेशन थिएटर माने केवल डॉक्टर का काम है। अब कोई कहता मैं तो नहीं कराता ऑपरेशन, चला जा, डॉक्टर को पता है कि छह महीने मर लेगा, छह महीने ज्यादा नहीं जिएगा, और वही होता है। तो पुण्यात्माओं, ये वो स्थान है, यहां पर आपने केवल एक उद्देश्य लेकर आना है कि हमारा कल्याण हो। तो अब जो प्रसंग चल रहा था कि आप जी यहां जो आते हो ये सोचकर आओ कि हमने मोक्ष कराना है, और मोक्ष के साथ साथ अब ये जो आपको अन्य जो सुख हैं वो तो फ्री में दिए जाएंगे, फ्री में, रूंगे में। रूंगा क्या होता था, जैसे हम छोटे छोटे थे जब गांव में हमारी दादी, वहां जैसे कोई सब्जी बेचने वाला आ गया, कोई प्याज बेचने आ गया, कोई आलू बेचने वाला आ गया और कोई फल ले रहा है, तो आवाज लगाता ले लो आलू ले लो। तो हमारी दादी जी पहले क्या करते थे, गेहूं चने होते थे, पैसा होता नहीं था, गेहूं या चने किसान परिवार में जन्म था दास का, तो दादी भर के ले जाती एक बेला गेहूं का या चनों का, और वो पूछती भाई कित कैसे देगा इसको, वो कहता दो चनों के तीन बार, चने एक तरफ डाल लेंगे पालड़े में और उधर से उसके इक्विलेंट तीन बार मैं उतने उतने आलू दूंगा। अच्छा, वो तीन बार तोल दिए आलू तो हो गया सौदा बराबर, वो तो होलिया जो होना था। अब क्या क्या करती भाई, रूंगा दे, रूंगा के फ्री ऑफ कॉस्ट वो एक आलू दे देता, अकेले माई यू रूंगा लेना भाई और दे, वो दो डाल देता ना, एक और ले, एक और ले छोटा दे देता, बुढ़िया राजी हो जाती, वो रूंगे उस न रूंगा क्या करते। अब कहने का भाव ये है कि वो जो रूंगा था ना वो तो सौदे में नहीं था, वैसे दिया उसने। तो यहां पर जो आपका हम सौदा करेंगे और जो आपको यहां संसारिक जो आवश्यकताएं हैं वो तो रूंगे में देंगे आपको, वो हमारा काम नहीं, वो तो आपको वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, वो तो अवश्य देंगे। जैसे आपने कई बार कोई दुकानदारों के यहां जाते हो शॉपकीपर के और कोई सामान खरीदते हो, तो वो उससे फिर कुछ ऐसा आइटम आप मांग लेते हो कि वो भी है क्या आपके पास, वो कहता है वैसे तो हमारी ये दुकान नहीं है, फिर ग्राहक मांग लेते इसलिए ये रखा है, ले ये भी ले लो। तो यहां जो हमारे पास सौदा है, जो हमारी दुकान है, वो जन्म और मृत्यु के रोग का नाश करने वाली है, और आपके आने वाले जीवन में जो कष्ट है उनका नाश करेगी, इस प्रारब्ध का भी कर्म को भी परिवर्तन करेंगे परमात्मा। आप जी यहां कोई अन्य संसारिक सुख मांगते हो ये भी हम रखते हैं, ये भी देने पड़ते हैं, ग्राहक यहीं आवे कि तो और ना चला जा, ये समझ लेना। अब इसका पूरा निष्कर्ष ये जानिए कि यहां आपको सर्व सुख मिलेंगे, लेकिन आप जी को कोई कष्ट भी रह रहा है तो ये समझना, उसके दो कारण समझना। एक तो परमात्मा की इच्छा है कि ये दुख आप पर रखना अनिवार्य है, क्योंकि एक दूसरा कारण यह है कि जैसे डॉक्टर ने पहले वो ट्रीटमेंट करना, इसका जीवन रक्षा हो, पेट के दर्द की वो तो फिर देख लें, गोड्डे के दर्द न था फिर इलाज कर दूंगा, तो ऐसे समझ कर चलना इस मार्ग पर, क्योंकि आप पहली बार आए हो और 25 डिमांड है आप क्या आते रख देते हो, ये भी हो ये भी हो ये भी हो। अब धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो, मालिशी ते सौ गड़ा समय आए फल हो। एक आम का पौधा आप लगाते हो और उस पौधे में सिंचाई करते हो, 10-12 वर्ष में जाके 8-7 वर्ष में उसकी खूब सेवा करते हो, फिर वो बड़ा होता है, बड़ा होकर के फिर उसके फल लगेंगे और इतने फल लगेंगे आप भी खा लोगे, अचार भी डाल लोगे, पड़ोसियों को भी दे दोगे, रिश्तेदारों को भी बेच दोगे, तो भी ना खत्म हो तुमसे। यानी ये राम नाम का पौधा ईब बोया है आपने, ईब इसका थोड़ा सा समय दो भगवान ने, और आप इसकी करो पूजा, जो दास बताता है सेवा करके देखो सिंचाई से, धीरे धीरे इतना ऐसे बढ़ेंगे आपके संस्कार कि इतना सुख हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। अब यहां दास देखता है, पहले गांव गांव में घर घर में सत्संग किया करते थे, अब जो अमीर ये माया के धनवंत थे वो तो इंदिरा दास स्वामी धन धन सतगुरु और वो बड़े बड़े पंथा में इस क्या नाम है आसाराम कर सुधांशु गजा चिपके थे और बेचारे दुखी सुखी दुखी दाखी थे, वो दास के संपर्क माने लगे, यहां थे उनको राहत मिलन लगी। तो उस प्रारंभ में ये दास देखा करता था, क्योंकि दास तो सर्विस भी करता था, सैटरडे संडे को सत्संग भी कर दिया करता था, तो हम कहीं सत्संग कर रहे होते तो कोई नोता देख रहा था अपने मित्रों को नगर के नगर में कि हमारे घर आना और उस गली में हमारा घर है और गुरुजी सत्संग करेंगे, तो अब वो भगत याद करते हैं उन बातों को और कहते हैं कि उन दिनों को अब याद करते हैं जब प्रारंभ किया था आपने इस भक्ति मार्ग को, उसमें हम जैसे किसी के घर जाते थे, घर की पहचान हमें नहीं होती थी, तो क्या पहचान कर रखी थी हमने कि जिस घर के सामने 3-4 साइकिल खड़े हों और 5-4 साइकिल खड़े हों तो समझ लो यहां सत्संग होने लग रहा है गुरु जी का। यानी इतनी वीक पोजीशन के भक्त हमारे साथ जुड़े थे, यह पहचान थी कि जरा 5-7 साइकिल खड़े हों, मोटरसाइकिल का नाम नहीं, यहां सत्संग हो रहा किसी के घर में। और अब देखते हैं उन्हीं पुण्यात्माओं के ट्रक चलते हैं, ट्रक और गाड़ियों में आते हैं, कारों में अपने बच्चों समेत। अब उन्होंने ये मांगा नहीं, उनको कुछ पहले तो यही मांगने आए थे, वो धीरे धीरे देना शुरू किया, लेकिन फिर बाद में जब ज्ञान हुआ, उनके संस्कार इतने प्रबल हो गए, अब परमात्मा समय अनुसार उनको जो आवश्यकता कहते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली आप पर पूरी करता रहता है। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। और आज दास देख रहा है इस पार्किंग में कार नहीं नोड़ती बच्चों की, इतनी बड़ी पार्किंग है, तो कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए हमारा धर ले ध्यान, ये सुख भी मैं ही दूंगा, ये और नहीं दे सकते, वो तेरे संस्कार को ही दे सकते, और उन संस्कारों को तुम बर्बाद कर रहे हो जो वहां दूसरे पंथों के पास जाकर बैठ के। अब एक 30-30 वर्ष 35-35 वर्ष के साधक राधा स्वामी पंथ धन धन सतगुरु पंथ इन जय गुरुदेव पंथ वालों से आ रहे हैं, अब ये पहले माया के धनी थे, माया के धनवंत थे और वहां कुछ भविष्य की भक्ति थी नहीं ठीक, और फिर भी ये सुखी थे, तो ये सोच रहे थे कि हमने इस साधना से लाभ हो रहा है। अब एक परिवार में 6-6 कष्ट आ गए, एक बता रहा था मेरी पत्नी के तो वाल बदले गए और मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी डिफेक्ट होगी, और मेरे पास 3 गाड़ियां चलती थी, आज कंगाल हो गया, लोन में सब बिक गई, और राधा स्वामी से 25 वर्ष से जुड़ा था, अब जब तक वो पूर्व जन्म की बैटरी ठीक थी इनकी तो सब कुछ सुख भी लगे थे, ये सोच रहे थे इनसे सुख हो रहा है और यहां से नए सिरे से सुख दिया जाता है, नए सिरे से सेटिंग की जा रही है। एक एक परिवार को 20-20 सुख अपने आगे गिनवा दूंगा यहां पर। फिर भी दास फिर यही आता है कि इस सुख को मानकर इस घने सुख की डिमांड मत करना, इस बात को ध्यान रखना के सुख के माथे पत्थर पड़ो जिस ते ना मर दे ते जावे और बलियारी वा दुख के जो पल पल नाम रटावे के हे परमात्मा ईसा सुख बाढ़ में पड़ो जिस ते तेरी भूल पड़े। हे परमात्मा वो कष्ट भी हमें बना रहे जिससे आपकी याद बनी रहे। अपनात्मा जो आप यहां आए हो, दास देख रहा यहां पर 90% व्यक्ति भक्त बेटी भाई बहन ये कष्ट वाले आए हैं जिनके ऊपर कोई आपत्ति किसी टाइप की भी है, वो दुख निवारण के लिए पहुंचे। अब ये समझना कि वो दुख आपके लिए वरदान बन गया। यदि आप पर कष्ट ना आते तो आप जो कुछ भी कर रहे थे वो फाइनल मान रहे थे। उस दुख ने आपके ऊपर एक मेहर करी कि यहां खोजते खोजते आप ठीक ठिकाना आ गए। अब वो दुख भी दूर होगा और सदा का जरा और मरण का यो झंझट ये संकट भी कटेगा आपका। हमारा तो यहां ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल इस दीर्घ रोग का नाश करने वाला है, जन्म और मरण के रोग का जो पृथ्वी पर किस ब्रह्मांड में कहीं नहीं है ये हॉस्पिटल। अपनात्माओं अब हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं के पहले गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। बिन परमेश्वर की भक्ति सतपुरुष की भक्ति, क्योंकि हमारा साहेब सत्य पुरुष है, अंडरस्टूड है वो हमारे लिए। अब जैसे अभी तक ब्रह्म ब्रह्म कहा करते थे ये ब्रह्म के पुजारी, यही राम यही खुदा, तो उनके लिए ब्रह्म ही फाइनल था। अब इसके लिए जैसे ये पुरुष माने प्रभु, ब्रह्म माने प्रभु, तो ये ब्रह्म कहते हमारा साहब, ब्रह्म को साहब को पुरुष को, इस सर पुरुष को यानी ज्योति निरंजन को इन वेदों वालों ने ब्रह्म को फाइनल गॉड मान रखा था, कंप्लीट गॉड मान रखा था, पूर्ण परमात्मा मान रखा था। और जब ये खुद कहता है और गीता पढ़ने वालों को, गीता बोलने वाले को फाइनल गॉड मान रखा था, ये तू ऐसे अज्ञानता वो श्री कृष्ण जी से ये ज्ञान प्राप्त मान रहे थे गीता का, नहीं गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके है। और इन काल भगवान ने सर पुरुष ने बोला था तो ये इसी को परमात्मा मान रहे थे श्री कृष्ण जी को, इसलिए कृष्ण जी को इतना महत्व दे दिया कि गीता तो कह रही है कि ओम नाम से अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसका अंतिम स्वास्थ्य साधना करता हुआ जाता है तो ओम से मिलने वाली जो परम गति वो प्राप्त हो जाएगी। वो आपको बता दी वो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में, ये भी अनुतम है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्पष्ट कर दी इसने गीता के अन्नदाता ने कि वो मेरी साधना भी अनुतम है। इसलिए तो कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि उस तत्वदर्शी संत की खोज के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब तक जन्म मृत्यु है परम शांति नहीं हो सकती। अब मान लिए कोई ब्रह्म लोक में चला गया, देवता बन गया, वो कुछ दिन तो देवता हो गया, मरते फिर गधा बन गया, बता परम शांति कहां से हुई और शाश्वत स्थान कहां हुआ उसका, वो जो सदा बना रहे जिस स्थान पर वो शाश्वत स्थान होता है, तो फिर वापस आ गया। अब गीता के पढ़ने वाले और पढ़ते हैं गीता, जपते हैं हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे राधे, बता सबके सिर घुमा रखे काल ने, बुद्धि उल्टी कर रखी फिट। अरे गीता जी पढ़ो, उसका तो अनादर कर रहे हो परमात्मा का, उसके साथ तो चीटिंग कर रहे हो। भगवान कहता है ओम के अतिरिक्त कोई नाम नहीं, और तुम करो राधे राधे और पढ़ो गीता। बता फूटे वाघ हमारे, ऐसे टीचर मिले हमें, सिलेबस कुछ कह रहा है पढ़ा रहे हैं नावल। तो पुण्यात्माओं इब तक तो हमारी इन्होंने गांठ बांध रखी थी, घसीट रखे थे वे, मतलब इन नकली गुरुओं ने। इब आप बुद्धिमान हो गए, आपको अक्षर ज्ञान इसलिए दिया परमात्मा ने कि मुझे पहचान सको ना। ये आग या शिक्षा एक अभिशाप है मानव के लिए, क्योंकि इसमें चतुराई गणी सीख ली और इस चतुराई से हम बेईमान बन गए। हाहाकार मचा रखी है, प्यार रहा नहीं, इतने चतुर बना दिए नु काग की तरह, बस पैसा पैसा ढूंढते फिरते हैं। बहन देखते ना भाई देखते, रिश्तेदार देखते ना कोई नाता देखते, असनाई देखते, और चैन नहीं किसी को, स्वप्न में भी चैन नहीं। इसे तो पहले जीवन दिया करते हमारे दादे परदादे, हमने देखे शांत रहते थे, जो मिल जाता उसमें खुश रहते थे, छोटी छोटी झोंपड़ी पक्के कच्चे मकान उसमें शांत रहते थे, कोई हाहाकार नहीं थी। अब किसी को चैन नहीं थे, अरबपति खरबपति बना बैठा रहे। और फिर लास्ट में उसका एक भगत कह रहा था जी, ये देखे अरबपति खरबपति कई कई कोठी कार ले रहे, और आप पी दाल गोल कहे, उनका जम होने बंद होगी, बीपी हाई हो गया, किसी का कुछ बढ़ गया है, और आप मेडिकल मरे हैं। वो कोठी वो कार वो माया उसका के काम आई, वो कल मर जाएगा, बालक फूकेंगे उसको, और पाप सारे आप इकट्ठे कर ले गया, जो माया जोड़न में जीवन व्यर्थ कर दिया वो आनी उसको न्यारी होगी। तो अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता अपनी भी साधना को अनुत्तम बताता है, और इसकी भक्ति से भी चलो चलो समाप्त नहीं हो सकती, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो हमने जो साधना करनी है वो कौन सी करनी है, जैसे परमात्मा का विधान है कि एक ओम नाम है ब्रह्म की साधना का, सर पुरुष का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष बताए, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म, वो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्वर्म की जानकारी दी है कि उसको जानकर प्राणी की ओर जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, वो किम तत्वरम, उसका 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये तीन पुरुष कहो चाहे प्रभु कहो। तो जैसे ब्रह्म ये ज्योत निरंजन को यहां अभी तक कंप्लीट गॉड मान रखा था, अरकल थी नहीं। अब वेदों में कहता है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में तो कहता है मेरा ओम नाम है, और यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 17 में तुरंत कहता है एक मंत्र छोड़ के। और यजुर्वेद का 40वां अध्याय अंतिम है, लास्ट है, और इसका अंतिम मंत्र है 17वां, पूरे यजुर्वेद का लास्ट मंत्र है, उसमें निर्णय कर रखा है। ये वेद ज्ञानदाता कहता है, ये देखिएगा अपने आत्माओं, ये शिक्षा आपको इसलिए दी है कि आप भगवान को पहचान सके। और अब तक हमें लोक वेद सुना रहे थे, शास्त्र विरुद्ध साधना कर और करवा रहे थे, अब टीचर वही है जो सिलेबस थे पढ़ाए, और आउट ऑफ सिलेबस जो पढ़ाता हूं तो शत्रु है उन विद्यार्थियों का, उसको फिल्मी गाने याद करावे, फिल्मी तर्जों पर ये गाने गावे लेकर 8 संतों के शब्दों की। तो यहां ये गलत कर रहे थे सारा। अब गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने जाप जपते हैं, न तो उनको सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। इसलिए 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में करने योग्य कर्म है, भक्ति के न करने योग्य है, उनमें शास्त्रों में प्रमाण है, उसके अतिरिक्त कुछ मत मानना किसी की। अब हमने अपने सदग्रंथों को फिर से ढूंढना, आप देखना पड़ेगा। अब देखिएगा यजुर्वेद में प्रकाश सिंह है, सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षिदान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, और इसके अनुवाद करता है महर्षिदान सरस्वती। ये यहां से प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स से पटौदी हाउस 1510 दरियागंज नई दिल्ली से छपा है। अब इसके देखना लास्ट में, ये कति लास्ट आ जाता है यजुर्वेद का, और ये 15वां श्लोक है 40वें अध्याय का, 44वां अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद। यहां देखना ये 15वां श्लोक मंत्र है, वायु अनिलम अमृतम अथिदम बसमानतम शरीरम ओम कर्तो समर किल्वे समर कर्तुम समर। 15वां श्लोक मंत्र, इस अनुवादकर्ता ने अनर्थ किए, इसको ज्ञान नहीं था। कर्तो हे कर्म करने वाले जीव, ये कर्तो समर काम कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय, अब देखो ओम ये ब्रैकेट में संस्कृत मूल पाठ के शब्द हैं, इनका अनुवाद अलग से करता है। ये ओम कर्तो समर किल्बे समर कर्तुम समर, यू मैं है कर्तुम समर। अब इस मत सीधा लिखा कि ओम ओम नाम का सिमरण, काम करते करते कर सिमरण कर, किल्बे माने किलबलाहट के साथ, ये विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और कर्तुम माने अपना परम कर्तव्य दान कर सिमरण कर। ओम का सिमरण के लिए संदेश है, और यू क्या कहता है अनुवाद करता स्वामी जी के, हे कर्म करने वाले जीव, कर्तो माने कर्म करने वाले जीव का ही अर्थ बनता है, ओम कर्तो समर काम करते करते सिमरण करो ओम का। यू क्या कह रहा है, कर्तो हे काम करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को समर माने समरण कर। अब नूना कहता ओम का सिमरण कर, इसे सिद्ध है कि ये ओम का सिमरण नहीं करता था महर्षि दानंद, इसका अर्थ गलत करा। ओम का सिमरण नहीं कहता कि ओम का सिमरण कर, ये कहता जिसका ओम नाम है उस भगवान का सिमरण करे, ओम का नहीं। और किल्बे यानी अपने सामर्थ्य के, यदि अगर भाई इतना ही दिखाना था इसमें से। यहां देखो ये 40वें अध्याय का 17वां श्लोक है, वहां पर तो ब्रह्म कह रहा अपने विषय में, अब ये यहां क्या कह रहा है कि हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रख सके मुद से, ये ज्योत स्वरूपी तो काल है, ब्रह्म काल है, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है कि ईब मैं वो एक विशेष बात बता रहा हूं। ब्रह्म कहता है जो वह असौ माने वह प्राण व सूर्य मंडल में, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा यानी वेद ज्ञान दाता से अन्य है, वह पूर्ण परमात्मा है, वो तो परोक्ष है, वह परोक्ष रूप वो छुपा हुआ है, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ परोक्ष होती है, मूल परोक्ष होते हैं, ऊपर तने से लेकर ऊपर सारा कुछ प्रत्यक्ष होता है, तो वह तो परोक्ष है, रूप है, वो तो परोक्ष रूप है, जो वह पूर्ण परमात्मा है ये समझो, वह परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, वेद कह रहे हैं ये, और युग वेद ज्ञानदाता कहता अहम मैं खम यानी ऊपर ब्रह्म लोक में, खम माने ब्रह्म लोक में, अहम ब्रह्म खम ये है कि अहम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म सो असौ अहम, यो अहम है, मैं ऊपर खम माने स्वर्ग में अंतरिक्ष में रहता हूं, मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। अभी इस अनुवाद का कुकर आगे कैसे अड़ंगा किया इसने, यहां तक तो ठीक लिख दिया कि ये वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये कह रहा कि हे मनुष्यो जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुद से यानी मैं काल हूं ज्योत स्वरूपी हूं, अपने आप को रक्षक कहता है लेकिन ये भक्षक है, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित यानी छुपे हुए जिस मुखम यानी मुख्य यानी खास परमात्मा, मुख्य अंग उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है यानी मूल संसार रूपी वृक्ष की मूल जो है वो अंग है, उसका कहते हैं उस मुख्य अंग का बताता हूं, जो वह पूर्ण गीता पूर्ण परमात्मा है, सूर्य मंडल में यानी सतलोक में ये तो, और पूर्ण परमात्मा है वह तो परोक्ष रूप है, और अहम मैं खम आकाश के तुल्य यानी अंतरिक्ष में हूं, ब्रह्म हूं, सब गुण कर्म स्वरूप करके अधिक हूं। इन्होंने लिखा मैं ब्रह्म हूं और ओम ऐसा नाम जानो, और मेरा यो ओम नाम, ये दो बार ओम नहीं है, इसमें केवल एक बार ओम है ओनली, ये तो अड़ंगा करण खाते लिख दिया इसने ओम, इसका ओम अड़ लिखने में शर्म आया इसने, क्योंकि ओम नाम जपता ही नहीं था, इसलिए तो इसकी बिरंगमाटी होगा मेरा। अब कहता है सबका रक्षक दो मैं उसका ओम ऐसा नाम जानो, ये नाम लिखते हैं भी शर्म आई इसने, अगर दे कोई नो कह दान दो ओम नाम जपया करता, या लिखना था उसका ओम नाम है। अब हमने देखना है कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है पूर्ण परमात्मा, और अहम मन में, और अहम खम ओम खम अहम मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूं, ऊपर अंतरिक्ष में रहता हूं अहम मन में, यहां सो असो अहम वह प्रोक्ष रूप है, और अहम मैं ब्रह्म हूं और आकाश में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। अपुनात्मो इन पवित्र चारों वेदों का कोड वर्डों में संक्षिप्त है गीता जी। गीता जी के चौथे अध्याय में कहा कि तत्वदर्शी संतों की खोज करें, और वही इस यजुर्वेद में कर रखा है 40वें अध्याय के 10 से लेकर 13 तक, देख फिर दिखाता हूं थोड़ा सा। अपुनात्मो आप नए सिरे तो पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, ये ऐसे नहीं कि आयु मना नाम दे दिया तुम जपन लाग जाओ, कोई भगा दे वहां कुछ नहीं है, तुम फिर दो दिन में सुख हो जाएगा फिर भाग जाओ फिर वहीं काल के जाल में, ये ठीक नहीं। दास नहीं चाहता आपको फिर ऐसे बर्बाद होने दूं। ये यजुर्वेद वही तत्वारी से अध्याय 40वां, यहां देखो 10वें श्लोक से, ये 10वां है 40वें अध्याय का, 40 में जाएगा 10वां। हे मनुष्यों जैसे हम लोग, अब धीरा नाम का अर्थ है तत्वदर्शी संत, इसको किसी तरह डिफाइन कर लेंगे। धीरा नाम माने तत्वदर्शी संत, मेधावी योगी विद्वानों से, क्योंकि यो योग ने मैं तो देता इसलिए अनुवाद अपने हिसाब से कर दिया। तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, वेद ज्ञान दाता कहता है कि जो धीरा नाम तत्वदर्शी संतों से जो हम वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से कहते हैं, वे लोग संयोग, देखो संभवात, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, असंभवात उत्पन्न नहीं होना, संभवात माने उत्पन्न होना, सीधा सार्थ हम भी कर लेंगे इसे बालक थोड़ी है, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना और संभवात माने उत्पन्न होना कार्य से, और ही कार्य का फल वा क्यों था अनुवाद में, वा शब्द क्यों था, कार्य का फल कार्य वा फल कोई बात है, वा अर्थ नहीं होना चाहिए। आउ माने कहते हैं उत्पन्न नहीं होने वाला कारण से अन्यत आहु कहते हैं, इस बात को तुम भी सुनो। अब ये इसका अर्थ है कि कोई तो कहता है भगवान असंभवात वो जन्म नहीं लेता उत्पन्न नहीं होता, कोई कहता है वो संभवात माँ का जन्म लेकर उत्पन्न होता है, कहता है ये संशय भी धीरा नाम संत जो बताते हैं उनसे सुनो। धीरा नाम तत्वदर्शी संत जो वचन सुनाते हैं उनसे सुनो, वो बताओगे सही।